सो मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हमारी क्लास नंबर 25। ट्रिनिटी की, त्रिदेव की पढ़ाई का तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बारे में। तो आज हम तीसरे भाग की पढ़ाई में हम जरा झलकियां देख ले पिछली दो क्लास की, कि सबसे पहली बात कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल ट्रिनिटी के बारे में शिक्षा नहीं दे रही है। त्रिदेव के बारे में पढ़ाई बाइबल से नहीं आ रही है, वो भूतों की शिक्षा है। और दूसरी बात हमने देख लिया है, पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की शक्ति है, ना खुद कोई परमेश्वर या खुद कोई इंसान, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसके बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है पिता परमेश्वर के द्वारा सीधे तौर पे बनाई हुई सृष्टि। बाकी जो कुछ भी बनाया वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बनाया, और यही है पुत्र की महिमा। पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का शब्द, पिता परमेश्वर का स्पीकर, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ कारीगर का काम, पर पिता परमेश्वर का हाथ, पिता परमेश्वर की मौजूदगी का दूत। प्रभु यीशु मसीह वो आर्कएंजल माइकल जो स्वर्ग में था, जो परमेश्वर के दाएं तरफ बैठता था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसकी गोदी में रहने वाला, उसकी मौजूदगी में रहने वाला परमेश्वर प्रभु। तो आज हम सीखेंगे वो एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर के बारे में बाइबल से, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 17:3 में। पढ़ो यूहन्ना 17:3। यूहन्ना 17:3
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से पिता परमेश्वर है एकमात्र सच्चा परमेश्वर। क्या है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जरा ध्यान से देखो, इनमें बहुत गहरा मतलब है। परमेश्वर को बोल रहा है, पिता को बोल रहा है, पिता तुम्हें बोल रहा है, तुम्हें यानी पिता, जो सिर्फ मतलब एक ही है परमेश्वर, सिर्फ ओनली ओनली ट्रू गॉड, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर एक ही है, और इसकी बड़ी सुंदर गवाही प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, और प्रेरित पौलुस भी ये गवाही देता है। पढ़ लो 1 तिमोथियस 2:5।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है।
बस ये कौन बोल रहा है? तीन परमेश्वर नहीं है, दो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कितने हैं?
एक
ही परमेश्वर है, ये पौलुस पढ़ा रहा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, देखा सड़क पे देखा, वो बता रहा है कि एक ही परमेश्वर है और वो है पिता। और पौलुस ही बताता है परमेश्वर के बारे में कुलूसिया 1:15, अदृश्य परमेश्वर, है ना, बोला ना, अदृश्य परमेश्वर। परमेश्वर अदृश्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर है आत्मा, परमेश्वर शरीर नहीं है।
कुलूसिया 1:15 वह तो आदृश परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला
था। आदृश परमेश्वर को देखा नहीं जान सकता।
15
और उसके बाद पढ़ लो, पौलुस फिर से बोलता है परमेश्वर के बारे में, 1 कुरिन्थियों 8:5-6।
यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं।
अलग अलग कर दिया ना, पिता एक है, प्रभु एक है, परमेश्वर एक है, प्रभु एक है। पिता कौन है? एक ही है परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है पिता, और दूसरा कौन है? पुत्र, जिसको हम जानते हैं, हमारा प्रभु। तो सचमुच यहाँ पे पौलुस साफ कर दिए जा रहा है, साफ कर रहा है ना, बात साफ साफ है। तो लेकिन आगे क्या बोलता है, सातवें वचन में पढ़ लो, परंतु
पर सबको ये ज्ञान नहीं।
बस ये स्थिति है या नहीं है? सबको ये ज्ञान बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग।
क्या बोला तुम, अगर किसी को समझाओगे ना, ज्ञान ही नहीं है उनको, आप समझा ही नहीं सकते उनको।
बहुत कम लोग ये सच्चाई जानते हैं, और उन कम लोगों में आज आप भी हैं। ठीक है, ये 99.99% क्रिश्चियन 99.99% ईसाई इस बात को नहीं जानते, इस महान सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन आज पिता परमेश्वर की कृपा हम पे हुई कि हम जानते हैं उस सच्चे परमेश्वर के बारे में, कि पिता पिता है, एक ही परमेश्वर है, और पुत्र पुत्र है। ठीक है, तो चलो अब हम सीखेंगे वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में, जिसे हम स्वर्गीय पिता बोलते हैं। इसीलिए कभी हमारी प्रार्थना नोट की, ऐ हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र के जरिए हम आपके दया के सिंहासन में के सामने आते हैं। ठीक है, तो ये है वो परमेश्वर जिसे इज़राइल का परमेश्वर बोला गया है। अब आज के बाद हमें प्रार्थना में ये बोलने की जरूरत नहीं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, क्योंकि ऐसे कौन बुलाता था? इज़राइली, यहूदी बुलाते थे। हम, हमें उसने बाप कहने का अधिकार दिया। क्या बोला? है हमारे स्वर्गीय बाप। ये तो पढ़ लो, प्रेरितों के काम 3:13, इज़राइल का परमेश्वर।
प्रेरितों के काम
3:13,
अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने इसका उसका इनकार किया।
देखो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे भी साफ साफ हो रहा है, परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो इजराइली परमेश्वर को इस नाम से जानते थे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर,
ये उनकी प्रार्थना थी। हाँ,
ठीक है, तो इब्राहिम और इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने अपना नाम जो बताया वो था एल शद्दाई। एल शद्दाई, एल का मतलब होता है गॉड, जैसे माइकल, एल माइकल, माइका का मतलब परमेश्वर, माइका का मतलब जैसा, और इल का मतलब गॉड, गॉड जैसा, परमेश्वर जैसा। और इनको नाम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर ने अपना नाम पता क्या बताया? एल शद्दाई। निर्गमन 6:3 पढ़ लो, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। निर्गमन 6:3, एल शद्दाई इब्रानी शब्द। ठीक है
जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था।
क्या, किस नाम से दर्शन देता था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब इसहाक, याकूब और इब्राहिम को जब कोई संदेशा परमेश्वर पहुंचाता था, अभी परमेश्वर नहीं आता था, दूत ही आता था, लेकिन जब वो पूछते थे आपका नाम क्या है, बोलता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ठीक है, और जब वो मूसा को मिला झाड़ियों में से दूत, लेकिन परमेश्वर के नाम से, तो मूसा ने नाम पूछा, आपका नाम बताओ, जब मैं इसराइलियों के पास जाऊं तो क्या बोलूं, किसने मुझे भेजा है जी। तो ये बात पढ़ लो, कूच 3:13, निर्गमन 3:13।
मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं।
तो मूसा नाम जानता था, मूसा तो इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर से जानता था ना, लेकिन फिर भी मूसा नाम पूछ रहा है, नहीं मुझे अपना असली नाम बताओ, आपने उनको तो बता दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर या तुम्हारे पिताओं का परमेश्वर, मैं बोलूंगा जाके कि तुम्हारे पिताओं के परमेश्वर ने भेजा मुझे। तो बोलते वो पूछेंगे नाम, नाम बताओ नाम, तो परमेश्वर नाम बताता है आगे क्या बोलता है 3:14 में परमेश्वर
ने मूसा से कहा,
मैं जो हूँ सो हूँ, इंग्लिश में है आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, जिसका मतलब है जो ग्रीक शब्द इब्रानी शब्द जो इस्तेमाल हुए परमेश्वर ने जो जो इस्तेमाल हुए थे वो थे YHWH। अभी इन शब्दों को बोला नहीं जा सकता, तो इसमें हम वाउल्स लगाते हैं, इंग्लिश में आते हैं वाउल्स AEOU, ऐसे जब लगाते हैं तो बनता है याहवे, याहवे, और ग्रीक भाषा में बनता है यहोवा, क्या बनता है यहोवा। तो परमेश्वर ने अपना नाम जो बताया मूसा को, क्या नाम बताया यहोवा, जो हूँ सो हूँ। और निर्गमन 3:15 में, 3:15 में पढ़ लो, परमेश्वर बोलते हैं ये है मेरा नाम सदा के लिए, ये बदलेगा नहीं।
फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है।
हाँ, आगे
देख, सदा तक मेरा नाम,
सदा तक मेरा नाम
यही रहेगा,
आगे
यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी
मुझे इसी नाम से याद करेगी।
इसी से हुआ,
परमेश्वर का नाम नहीं बदलने वाला। अच्छा, नवे नियम में गया तो यीशु बन गया, परमेश्वर बोल रहा है ये मेरा नाम सदा तक यही है और लोग मुझे इस नाम से याद करेंगे, समझे आप।
जो हूं तो हूं।
हाँ, तो अब क्रिश्चियंस क्या करते हैं, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का नाम यहोवा था, नए नियम में यीशु हो गया, ये कैसे। परमेश्वर बोल रहा है मेरा नाम कभी कभी भी नहीं बदलेगा, लोग मुझे इसी नाम से क्या करेंगे, याद करेंगे। इसीलिए आपको, आपने कभी नोट किया, मैंने यहाँ पे आपके बोला बोलो हालेलुया, बोला मैंने बोला के हम सब हालेलुया बोलते, लेकिन हालेलुया का किसी को मतलब ही नहीं पता है। हालेलुया, ये या पता कौन है, ये पिता परमेश्वर, और ये सब किसके नाम पे बोलते हैं, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सोचते प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हालेलुया, लेकिन हालेलुया किसको बोल रहे हैं यही नहीं पता है, यही नहीं पता है हालेलुया किसको बोल रहे हैं, देख लो सोच लो। हालेलुया पर या परमेश्वर की स्तुति हो, यस परमेश्वर की
मतलब ये
परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की स्तुति, ये दूत शब्द इस्तेमाल करते थे पिता के लिए, लेकिन आज किसके लिए यूज हो रहे हैं,
देख लो। लोग पूछते हैं ना, आप बोल सकते हैं, कई हिंदू लोग पूछते हैं आपके हालेलुया बोलकर उसका मतलब क्या है, ऐसे बोलती थी यार जैसे आप लोग बोलते हैं
भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, ऐसे हम अपने
इसका मतलब होता है हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की महिमा हो, ये दूत शब्द इस्तेमाल करते थे।
तो
लेकिन उनको ये नहीं पता या कौन है,
या कौन है
ये नहीं पता, तो ये नाम जो परमेश्वर का जो असली नाम है, ये बाइबल में सिर्फ चार जगह पे आता है। बाइबल में सिर्फ चार जगह पे, एक तो भजन संहिता 83:18 पढ़ लो, 83:18
भजन संहिता
83:83:18
जिसने जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है।
तो एक बार यहाँ पे नाम आता है, दूसरी बार निर्गमन 6:3
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम इसहाक और याकूब को दर्शन देता हूँ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उस पर प्रकट ना हुआ।
मैंने अपना नाम इब्राहिम इसहाक याकूब को नहीं प्रकट किया। तो दूसरी बार इसमें नाम आता है, तीसरी बार यशाया 12:2 में नाम आता है।
यशाया 12:2 12:2 है ना, परमेश्वर मेरा उद्धार, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है।
तीसरी बार यहाँ पे जिक्र आता है और चौथी बार यशाया 26:4 में।
26:4 यहोवा शब्द है ना, 26:4 यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान।
तो चार बार जो परमेश्वर का असली नाम है वो आता है सही बाइबल में। उसके बाद पांचवी बार परमेश्वर ने अपना एक जगह नाम प्रकट किया, सिर्फ या वो पढ़ लो भजन संहिता 68:4 68
4:4 परमेश्वर का गीत गाओ, उसका नाम, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्लज देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो।
तो टोटल सिर्फ पांच बार बाइबल में नाम आना चाहिए।
शॉर्ट में किस लिए
दिया था? या शॉर्ट में दे दिया
बता
देंगे। तो सिर्फ पांच बार नाम आ रहा है, लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपकी बाइबल में बार बार ये नाम आ रहा है, बार बार ये नाम आ रहा है, बार बार ये नाम आ रहा है। एक्चुअल में ये अनुवादित गलती है,
वो प्रभु मृत्यु जगह।
तो ये लगभग 7,000 शब्द या 7,000 बार जो इंग्लिश बाइबल में थी ना, इंग्लिश में था लॉर्ड, इंग्लिश में यहोवा नहीं है, इंग्लिश में है लॉर्ड, वो भी कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, LORD कैपिटल लेटर्स में। और प्रभु यीशु मसीह के लिए पता, जब यूज होता है तो क्या होता है, L बड़ी बाकी सब छोटे, लेकिन परमेश्वर के लिए L भी बड़ी, O भी बड़ी, R भी बड़ी, D भी बड़ी, ठीक है। तो लॉर्ड था इंग्लिश में, लेकिन जब ये अनुवाद किया पंजाबी हिंदी और इनमें, इनमें सब में असली नाम डाल दिया, इसमें सब में असली नाम डाल दिया, लेकिन असली नाम बाइबल में, इंग्लिश की बाइबल में सिर्फ पांच बार आता है, चार बार जो परमेश्वर का नाम है और पांचवी बार सिर्फ जा, लेकिन बाकी सब जगह था लॉर्ड 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 लॉर्ड, नाम से नहीं बोला जाता था। क्योंकि ये नाम इतना पवित्र नाम है, इसके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, निर्गमन 20:7 पढ़ो, निर्गमन 20:7
तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले रहे उसको निर्दोष ना ठहराना।
तो इस वचन में भी इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में इस वचन में कहीं नाम आता है परमेश्वर का?
साथ में,
हाँ साथ में।
यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, लॉर्ड
लॉर्ड बड़े अक्षर में है ना?
हाँ जी, छोटे में नहीं,
नहीं बड़े में।
लॉर्ड योर गॉड इन वैन फॉर द लॉर्ड विज नॉट होल इन गिल्टनेस हु टेक
तो ये देखो व्यर्थ नहीं लेना है। और यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया मैंने आपको कि लॉर्ड शब्द को ट्रांसलेट किसने कर दिया? परमेश्वर के नाम से। बड़ा एल ओ आर डी था परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल हुआ, लेकिन हिंदी में असली नाम डाल दिया। ये देखो ये गलती है। तो ये नाम बड़ा पवित्र नाम है, ये नाम बड़े आदर और महिमा के योग्य नाम है। और कई मिशनों ने ये नाम लेना शुरू कर दिया, जैसे यहोवा विटनेस। और आपको पता है लोग यहोवा विटनेस को कितनी निरादर से पुकारते हैं, अरे ये अच्छी मिशन नहीं है। तो आप परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हो, व्यर्थ यूज कर रहे हो। तो ये व्यर्थ ले रहे हो आप, आपको आप ये लिख दो लॉर्ड विटनेस, परमेश्वर की गवाही, ऐसा कर दो। नाम लेने की क्या जरूरत है? ये नाम देखो, जरा सोचो, हमें बहुत सावधान रहना है। ये नाम जब आप पढ़ते हो ना, हमारे बच्चे जब पढ़ते देखना, वो पिता परमेश्वर बोलेंगे, पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने अपने धरती के बाप को नाम से बुलाते हैं। क्या सिद्धांत आपको जेपी शर्मा करके बुलाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है? और दूसरी बात, इंग्लिश में लॉर्ड था और हिंदी में नाम कर दिया ऐसा। और जरा सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार नाम लिया पिता परमेश्वर का? एक भी बार नहीं लिया। क्या नाम नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह? प्रेरितों ने कितनी बार नाम लिया नए नियम में? एक भी। पिता बोलते थे, हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर। क्या उससे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं आज हम? तो क्या वो लोग नहीं जानते थे नाम? और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे सिखाई? ये पढ़ो, यस यस पढ़ लो, मैथ्यू 6:9, मत्ती 6:9।
अच्छा, प्रभु यीशु ने कभी नहीं लिया ना?
एक भी बार नहीं लिया। तो ये नाम पवित्र नाम है, ये बड़ा ही आदर और महिमा के योग्य नाम है, इसको व्यर्थ नहीं लेना है। पिता परमेश्वर के नाम को हम, हमारी जुबान बहुत छोटी है वो नाम लेने के लिए, ठीक है? पत्रस देख लो कैसे लेता था। पहला पत्रस 1:3, एक पत्रस 1:3, एक का तीन,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कितना महिम आदर के साथ बोला, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर।
याकूब 1:17,
क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और
ज्योतियों के पिता
की ओर से मिलता है।
ज्योतियों का पिता बोला, सारी लाइट का पिता। देखो बाप,
पिता परमेश्वर को ज्योति बोला गया ना,
ज्योति का बाप,
बाप
बाप। ये सूर्य देख लो कितनी बड़ी ज्योति है,
चंद्रमा सब कुछ उसके अंदर।
हाँ, तो सूर्य इतनी इतना वो है, चमक देता है, तो पिता परमेश्वर की चमक क्या होगी? सोचिए, प्रेरित पौलुस कैसे बोलता था, 1:17।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में
महिमा का पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर है ना वो महिमा का पिता है ये पौलुस बोलता है
प्रकाश की आत्मा भी
ये पौलुस बोलता है क्या इनको नाम नहीं पता था परमेश्वर का ये भी तो यहूदी थे इनको भी तो नाम पता था ना
ये क्या बोलते हैं आजकल प्रचार करते हैं जो जो थे यहोवा तुझे आशीष दे बोलते ना
चेला यूहन्ना देख लो दूसरा यूहन्ना तीन दो यूहन्ना तीन
दूसरा यूहन्ना
एक ही चैप्टर है उसमें तीन तीसरा तीन वचन तीन वचन
तीन वचन परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से
पिता परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से
अनुग्रह और दया शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ है
बिल्कुल देख लो दो दो इंसान की बात कर रहे हैं हर जगह ये दोनों लेकिन आज एक की ही बात क्यों होती है दूसरा क्यों भूल गए हैं लोग एक को ही पिता परमेश्वर बोला जा रहा है तो क्या ये पवित्र आत्मा का काम है ये पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा यहूदा यहूदा देख लो 25
उस एक मास परमेश्वर हमारे उद्धार करता है कि महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है और अब भी हो और युगांत रहे आमीन
हमारे एकमात्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखो तो हमें भी प्रेरितों से सीखना है हमारे प्रभु यीशु मसीह के से सीखना है कि कैसे पिता को ये नाम को आदर और महिमा देनी है कैसे इस नाम से डरना है उस नाम को स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर और आज बहुत से ईसाई हैं जिनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिछली क्लास में मैंने बहुत से हमने पढ़ लिया वो वचन जो हमने पढ़ा था ना प्रभु यीशु मसीह ने बोला अब्राहम से भी पहले मैं हूँ तो वो बोलते प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ और मैं जो हूँ सो हूँ में बहुत फर्क है मैं जो हूँ सो हूँ ठीक है तो जो मूसा को नाम अपना परमेश्वर ने बताया वो था मैं जो हूँ सो हूँ और परमेश्वर ने ये भी बोला कि ये मेरा नाम सदा का नाम है ये बदलेगा नहीं ठीक है तो हमें बड़ी ध्यानपूर्वक रहना है पढ़ते समय कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब कभी ये नहीं था कि मैं ही पिता परमेश्वर हूँ कभी भी नहीं पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही नहीं देता है और यहाँ तक कि परमेश्वर पौलुस भी बताता है कि वो सच्चे परमेश्वर को ना तो कभी किसी ने देखा और ना ही देख पाएगा और जरा सोच लो अब मैं आपको और बात बताता हूँ बोलते प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा बादलों के साथ तो सारी दुनिया देखेगी ऐसा हो सकता है वो चिनात्मिक रूप में है बादलों के साथ आएगा मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है लेकिन लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सब देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है
तो पहले पहली बार जो देखा है इज़राइलियों ने जो देखा है क्या प्रभु यीशु मसीह को
तो
साक्षात घूमते थे परमेश्वर के साथ है ना
तो आग का खंभा था ना वो तो
यीशु मसीह को बोलो
किसने देखा
ठीक है वो
जब दूसरे आगमन में मैं बोल रहा हूँ आएंगे तो क्या उसको कोई देख सकता है नहीं देख सकता क्योंकि अब वो क्या है पिता परमेश्वर जो लाइट के बाप हैं उनके जैसा है प्रभु यीशु मसीह
12 तीनों में देखा यीशु मसीह को
हाँ तो वो शरीर में थे ना जब अभी जी उठे हैं
तो पवित्र हो चुके हैं अब नहीं देख सकते
हाँ तो वो मैं वो बात बोल रहा हूँ तो मैं वो बात बोल रहा हूँ कि ईसाई मानते हैं या आपके बड़े बड़े सिखाने वाले बोलते हैं या बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो बाइबल सिखाने वाले ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा सारी दुनिया इन आंखों से देखेगी तो क्या ये संभव है
परमेश्वर तो बोलते हैं कि तुम मेरे आगे तो टिकी अब तो प्रभु यीशु परमेश्वर के बिल्कुल समान बन गए हैं बिल्कुल वैसे तो उनका भी देश वैसे ही होगा तो कौन देख सकता है
ये देख लो। और दूसरी बात सोचो, बोलते सारी दुनिया देखेगी। एक बात मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, इधर जब दिन होता है उधर अमेरिका में रात होती है, जब उधर दिन होता है तो उधर, तो हम कितना आकाश कितना देख सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा फगवाड़े तक देख सकते हैं या लुधियाने तक देख सकते हैं। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह घूम घूम के दर्शन देगा क्या? चलो मैं आ गया, देख लो सब, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा आकाश में सारे संसार के को दिखाने के लिए अपने आप को, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात जब हम दूसरे आगमन की पढ़ाई करेंगे फिर मैं बताऊंगा कैसे आएगा और कैसे देखा जा सकेगा और क्या है क्या होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता परमेश्वर को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही अब प्रभु यीशु मसीह को भी कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता प्रभु यीशु मसीह। ये बात साफ साफ हमने वचन पढ़ लिए हैं, पहला तिमोथी 6:16 पढ़ा है और पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, और यूहन्ना 5:37 में भी पढ़ा है। वो बोलते ना किसी ने उसकी आवाज़ सुनी ना उसने किसी ने उसका रूप देखा, सही बात है। और फिर यूहन्ना 1:18 में भी बोल रहे हैं, कलोसिया 1:15 में भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो पिता परमेश्वर एक अदृश्य परमेश्वर है जिसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने देखा। तो पहला यूहन्ना 1:1 में पढ़ लो, यूहन्ना क्या बोल रहा है, पहला यूहन्ना 1:1, पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखा।
तो जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ।
ये प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, बोलते प्रभु यीशु मसीह को तो हमने देखा लेकिन पिता परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। तो अब आओ अब उस महान परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पिता के बारे में पढ़ते हैं। भजन संहिता 90:2 और यूहन्ना 5:26।
भजन संहिता 90:2
और यूहन्ना 5:26।
इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है।
परमेश्वर की कोई शुरुआत ही नहीं है, पिता की कोई शुरुआत ही नहीं है। यूहन्ना 5:26 में पढ़ लो,
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे।
देखो पिता का जीवन था अमरता का जीवन,
तो वो बेटे को भी दे दिया,
वो अमरता का जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, पिता की कोई शुरुआत नहीं है। इस संसार में आदम की शुरुआत है, शैतान की शुरुआत है, बहुत सी शुरुआत है। शुरुआत में परमेश्वर ने ये बनाया लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर युगो युग से था है रहेगा, ठीक है। और इसी तभी तभी परमेश्वर अपना नाम पता क्या बताते हैं, मैं जो हूँ तो हूँ। लेकिन आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल रीबॉक की एड देखना आप, रीबॉक की एड पे भी लिखा होता आई एम व्हाट आई एम दैट आई एम, ये परमेश्वर का नाम है कैसे व्यर्थ में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यरमिया 32:27 में पढ़ लो परमेश्वर के बारे में,
मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ।
सब प्राणियों का परमेश्वर है,
क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है?
परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है
नहीं।
यशाया 45:12,
हाँ जी,
मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सजाया है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना।
हाथों पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है।
देखो
सारे गणों को, गणों को,
गणों गणों लिखा है,
गणों गणों
गणों गणों
तो
आज्ञा दी है।
तो ये है हमारा परमेश्वर। अय्यूब 12:10
उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है।
प्राण और आत्मा यानी सोल और सांस सारी मनुष्य जाति का किसके हाथ में है?
परमेश्वर।
वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सारे आदर के महिमा के योग्य के पिता परमेश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला, सारे मनुष्य जाति को बनाने वाला, जीवन देने वाला। ठीक है, और उसके बारे में पढ़ते हैं यशाया 44:6-8 एक बड़ी दिलचस्प बात पढ़ेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना, मैं अल्फा और ओमेगा, पिता परमेश्वर भी बोलते हैं अपने आप को। छह से आठ, चवालीस का,
चौवालीस का,
चौवालीस का 6-8
यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका सुनाने वाला है, वे यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं।
ये परमेश्वर बोले, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं पहला हूँ। यही प्रभु यीशु मसीह के लिए भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, रिडीमर छुड़ाने वाला, और पहला और अंतिम। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे सिवा और कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता। 43:10-11 भी पढ़ लो, बचाने वाला भी लिखा है, मैं बचाने वाला हूँ।
43:10-11 यहोवा की वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीत करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं।
तो उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला, शुरुआत, अंतिम, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुए। तो कई लोग ये सोच के बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई अब हम देख रहे हैं, हमारी समझदारी की आंखें खुल रही हैं, पवित्र आत्मा मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17:10 में पता क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो
मेरा।
पढ़ लो यूहन्ना 17:10 प्रभु बोलते हैं मेरी महिमा किसमें है?
और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा है, और जो तेरा है वे मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है,
इनसे मेरी महिमा प्रकट होती है। तो प्रभु क्या बोलते हैं? जो मेरे चेले हैं वो तेरे हैं, जो तेरे ओहदे हैं वो मेरे हैं। मतलब कि जो आपके लिए इस्तेमाल होता है वो मेरे लिए, मेरे लिए जो इस्तेमाल होता है वो आपके लिए। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर क्योंकि देखो सोर्स कौन है, वो जड़ कौन है? पिता परमेश्वर ही तो है ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बनाया। तो वही तो सारी योजना रच रहा है। योजना बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है। और उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहा है ये योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना, एक तो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट है पिता परमेश्वर, लेकिन एक कारीगर होता है जो उसको आर्किटेक्ट को बनाता है,
नक्शा बनाने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर, और कारीगर उसको ढांचे को बनाने वाला
प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पिता परमेश्वर अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ। वही बचाने वाला है सच में। होशिया 13 में यही बोलता ना, मैंने, मुझे छुड़ौती मिल गई है, चुनौती किस रूप में? प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बहुत बड़े काम में क्या कर रहे हैं, हिस्सेदार हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो परमेश्वर लिखने वाला है, छोटी सी सिस्टर वो हमने पढ़ा हुआ है, परमेश्वर लिखने वाला है और एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। तो व्यवस्था सार 6:4 एक और बात पढ़ लेते हैं, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में।
सारी रिकॉर्डिंग हो गई है, बाद में देख सकते हो, कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6:4
हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है।
परमेश्वर एक ही है। तो इज़राइल को ये बात बोली जा रही है कि पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह सेम बात बोल रहे हैं, पता कब? मरकुस 12:29
हाँ,
6:4 और मरकुस 12:29 सेम वचन है, देख लो।
यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है।
नहीं, 12:29
मरकुस 12:29
ना। यीशु ने उससे उत्तर दिया, वही है,
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो।
यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये सब मुख्य है।
हाँ।
इज़राइली सुन,
हाँ,
प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है।
तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं इज़राइल को कि हमारा परमेश्वर एक ही है। अगर खुद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर होते तो पता क्या बोलते यहाँ पे, हे इज़राइल सुन, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने है।
ऐसे बोलते,
लेकिन बोलते हमारा परमेश्वर एक ही है, तुम्हारा भी और मेरा भी, और वो कौन है? पिता परमेश्वर, ठीक है। तो
हमारा बोला है ना,
सेम वचन है, वही वो जो हमने पढ़ा उधर व्यवस्था सार में। अब एक और बहुत सुंदर बात पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में, भजन संगीता 147:4-5 147:4-5
वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। यहाँ पर प्रभु मतलब यीशु मसीह को,
ग्रेट इज आर लॉर्ड, ग्रेट इज आर लॉर्ड,
उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है।
तो ये पिता परमेश्वर के बारे में वो क्या बोलता है, गिनता है, तारों को गिनता है और उनको नाम से बुलाता है। और वो कितना शक्तिशाली है और उसकी समझ अपरंपार है। अपरंपार मतलब इनफाइनाइट, कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। और पढ़ लो अय्यूब 38:31-32
38:31-32
38:31-32
क्या तू कच पचिया का गुच्छा गूद सकता या मृग सिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है या सप्त ऋषियों को साथियों समेत लिए चल सकता है?
तो ये देखो, ये पता क्या है, कॉन्स्टेंटेलेशन एंड गैलेक्सीज। एक एक गैलेक्सी में पता कितने कितने तारे होते हैं, ये साइंस बताती है हमें, ठीक है। तो ये जिसे मिल्की वे बोलते हैं, ये गैलेक्सीज है, कॉन्स्टेंट, हाँ कह ले गैलेक्सियों के नाम है, ठीक है। एक्चुअली जो हिंदी में ये है लेकिन इंग्लिश में है पेलेडीज, बैंड्स ऑफ ओरियन, मेजोरोथ, आर्कटूरस, ठीक है। ये सब ये साइंस है, ये साइंस ब्रदर, ये साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक 100 करोड़ तारे हैं, हमारी गैलेक्सी में 100 करोड़ तारे हैं, और जो मिल्की वे ऐसे हैं, धरती धरती ऐसी है, और इसके तरफ कितने वो ग्रह हैं, बोलते कितना घेरा हुआ है तो हमारा सोलर सिस्टम जो है, तो लगभग जरा सोचो 15,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं, 15,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं, और हर एक गैलेक्सी में 100 करोड़ तारा है, और जब 15,000 करोड़ गैलेक्सियों को 100 करोड़ से गुना कर दें तो हमें हमें शब्द भी नहीं आएंगे कि इनको बोलें क्या क्या, करोड़ों के भी बाप पता नहीं कितने कितने तारे, 100 करोड़ तारा एक गैलेक्सी में होता है और 15,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं, उनको कैसे बुलाता है, नाम से बुलाता है, उन तारों के नाम रखता है। जरा सोचो हमारा परमेश्वर क्या परमेश्वर है, ये सृष्टि का कोई अंत नहीं है परमेश्वर ने जो बनाई है, तारों को गिनता है, और इसीलिए भजन संहिता 145 की 3 में दाऊद पता क्या लिखता है, उसकी महिमा अपरंपार, हम नहीं ढूंढ सकते उसकी महिमा, हम नहीं जान सकते उसके बारे में, पढ़ लो भजन संहिता 145 का 4। पैंतालीस का 3,
यहोवा महान और अति स्तुति के योग है और उसकी बड़ाई अगम है।
अगम मीन अनसर्चेबल, जिसे खोजा नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। जरा सोच लो, अब धरती और इंसान देखना, इंसान अपने आप को बहुत बड़ा चालू और चातर समझता है ना कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, परमेश्वर के सामने क्या औकात है, कुछ भी नहीं। ये देख लो जरा यशाया 44:15,
तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है और उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है।
40:15
देखो जातियां, तो दो
जातियां, जातियां को इंग्लिश में क्या लिखा है सिस्टर, नेशन, देश,
जातियां तो
नेशन, देश, नेशन का मतलब होता है देश, आगे पढ़ लो हिंदी में।
देखो जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़े पर की एक धूल के तुल ठहरी, देखो वह दीपों को धूल के किनके तरीके उठाता है।
परमेश्वर के सामने एक बाल्टी में ड्रॉप ऑफ बकेट लिखा है, इंग्लिश में नेशन जा रहा है, ये देश जो है ना एक बूंद के समान है, और वो जो कांटा होता है ना, कांटा जब हम सामान लेने जाते हैं ना कांटे पे, तो बहुत मिट्टी जाती है कांटे में, लेकिन उसका कुछ वजन होता है नहीं, ऐसी है ये देश और ये धरती परमेश्वर के समान, और ये क्या परमेश्वर के सामने, सॉरी, तो ये क्या है परमेश्वर के सामने। इंसान जो अपने आप को आज बहुत वो समझता है, वो क्या ढूंढ पाएगा परमेश्वर के बारे में, जिसकी महिमा अगम है, अगम जिसे नहीं ढूंढा जा सकता,
जो पृथ्वी को, उसके लिए पृथ्वी एक बूंद के समान है,
बूंद के समान है, सोच लो जरा, एक चींटी, चींटी भी बूंद से छोटी होती, बड़ी होती है, चींटी भी नहीं बोल सकते, बूंद बूंद, जब हम, आप तो कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं, आप अपनी तरह के तरफ से सारा पानी बाहर फेंक देते, लेकिन एक आग बच जाती है, बूंद होती है, वैसी है ये देश और धरती परमेश्वर के सामने, क्या जान पाएंगे ये परमेश्वर के बारे में। ठीक है, अब जरा ये सोच ले, देख ले, इसके लिए उदाहरण दी हुई है, ये बाल्टी है और बाल्टी में छोटी सी बूंद और ये कांटा, उसके मिट्टी रहती है ना, ऐसी है ये, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, ये सत्रहवें अध्याय में यशाया 40:17 पढ़ लो बात।
40:17
सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है,
वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी गत है।
शून्य से भी कम, जीरो, जीरो से भी कम है ये सब उसके सामने।
लेस और शून्य से भी गट गट कह रही है। तो लेस कहती है वर्की प्लेस
देर काउंटर टू हिम लेस, लेस नहीं है इसमें लिखा है, बस जीरो से कम।
शून्य
हाँ। तो जरा सोचो परमेश्वर की महिमा और उसके काम। आजकल इंसान अपने इतने बड़े बड़े चमत् जो खोज करके अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, परमेश्वर के सामने क्या है? जीरो के सामने समान भी नहीं, जीरो के समान भी नहीं, उससे भी क्या है? कम। ऐसा है परमेश्वर हमारा, कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, बहुत शक्तिशाली, पावरफुल और कुछ भी बैठे बैठे कर सकता है। आप अभी आपको समझ आ गया उनको आने की जरूरत है धरती पे? ठीक है, जिसके सामने एक बूंद के समान है उसको बूंद में आने की क्या जरूरत है? सब कुछ उधर से ही कर सकता है, ऐसे उंगली घुमाई और सब कुछ हिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के बारे में 25 और 26 में पढ़ लो, इसी में।
इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे?
बताओ, मेरे साथ तुलना करने के लायक कोई है? हाँ।
कि मैं उसके तुलने
हाँ।
उस पवित्र का यही वचन है
हाँ। अपनी आंखें उठाओ,
अपनी आंखें ऊपर उठा के देख,
उठा के देख जरा,
किसने उनको सजा है,
किसने बनाया इसको?
वह इन कणों को गिनकर निकालता
हाँ।
उन सबको नाप ले लेकर बुलाता है,
नाप ले लेके, देखो
नाम
ले लेके बुलाता है।
ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता,
कुछ फेल नहीं होता। मान लो ऐसा नहीं हो सकता परमेश्वर ने कोई, या परमेश्वर से गलत हो गया, या परमेश्वर ने कोई योजना बनाई वो फ्लॉप हो गई, ये वैसा ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अपनी आंखें उठा लिया करो और देख लिया करो, कैसे ये तारे कैसे लटक रहे हैं आकाश में, कौन पकड़ा हुआ है इनको, कैसे एक एक चीज को सही जगह पे फिट किया हुआ है। जरा सोचो, सूरज 2 फुट नीचे आ जाए ना तो दुनिया जल के राख हो जाएगी, और अगर अगर ऊपर चला जाए तो ठंड से मर जाएगी। सूर्य को कैसे उसकी सही जगह पे माप के रखा हुआ है, बस यही है तेरी स्थिति, इससे इधर उधर नहीं हिलना है। ये है हमारा परमेश्वर। सोच लो ऐसे परमेश्वर के बारे में, ये लोग सोच भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं ऐसे परमेश्वर के बारे में वो क्या है? ढूंढने की तो अलग सी बात है, सोच भी नहीं सकते हैं उसकी महिमा, उसकी शक्ति और परमेश्वर की बनाई हुई योजना को कोई मोड़ भी नहीं सकता। पढ़ लो यशाया 14:24-27।
यशाया
14:24-27
अच्छा, सेनाओं की योगा ने ये शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा।
देखो, अगर कुछ परमेश्वर ठान लेना वैसा ही, वो वापस नहीं आता शब्द कभी परमेश्वर का हाँ।
और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी पूरी होगी कि मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा।
नहीं सकता, उसके बाद 27 पढ़ लो। उसके बाद
सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया उसे कौन रोक सकता है।
तो जो बोलते ना हम टाल देंगे, हम प्रार्थना करो ऐसा कर लेंगे, उनको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है। जो युक्ति परमेश्वर बना ले कौन है उसको टाल दे, कौन है उसको टाल दे। ठीक है, और जब उसका हाथ बढ़ जाए तो किसमें है हिम्मत उस हाथ को वापस कर दे। इतनी हिम्मत तो उसके बेटे ने भी नहीं की, लेकिन आज बहुत लोग हिम्मत करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बताएगा आने वाले समय में कि वो कौन है और कैसा परमेश्वर है। 46:10 अनजाने में ये कर रहे हैं, ये नादानी की ये निशानी है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है मैं क्या हूँ कौन हूँ।
इसी में 46
यशाया 46:10
मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा।
मैं अपनी इच्छा को जो मुझे अच्छा लगेगा ना
वो पूरी करूंगा।
ये परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं बदल सकते, उसकी युक्ति को मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता ब्रदर। हमें इतना अधिकार नहीं है, हम उसके सामने जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, समझ गए ना।
yes.
इसलिए आज जो जितनी बुराई चल रही है ना, जितना ये पाप चल रहा है, जितना ये सब जो कुछ हो रहा है, ये उसी की अनुमति से हो रहा है। अगर वो चाहे तो एक सेकंड लगाएगा रोकने के लिए। ये दुनिया आज जो घमंड कर रही है ना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, परमेश्वर की एक उंगली घूमी ना, एक उंगली घूमी, मान लो ये तेल ही बंद हो गया ना निकलना, तो दुनिया एक एक पत्थर की तरह रुक जाएगी और सुनामी ऐसे ऐसे पूरा समंदर धरती को निकल जाएगा अगर परमेश्वर चाहे तो। एक सेकंड का काम है परमेश्वर का, और ये इंसान हमने आपको क्या समझता है उसके सामने, ठीक है। और ये देख लो परमेश्वर ही अनुमति देता है, परमेश्वर खुद बोलता है वो ओ माई गॉड वाला वचन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी मैं, यशाया 45:7 ओ माई गॉड में बोलता है ना, ये देखो बाइबल में लिखा है
45:7
जी।
मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का रहता हूँ और विपत्ति की रचता हूँ, विपत्ति को रचता हूँ,
मैं ही रचता हूँ विपत्ति को भी। हाँ,
मैं योगा ही इन सबों का करता हूँ,
मैं ही बना करता हूँ ये सारी चीजें, बुराई भी मैं ही भेजता हूँ, शांति भी मैं ही देता हूँ, ठीक है। तो कैसे समझे ये इंसान इस महान अदृश्य पिता परमेश्वर को जिसे किसी ने ना देखा और ना देख पाया। अभी प्रश्न ये उठता है कि वो दिखता कैसा है, हम उसको कैसे समझें। तो पिता परमेश्वर की तस्वीर हम देखेंगे आज। प्रकाशित वाक्य 4 बताता है पिता परमेश्वर के बारे में। सिर्फ हम 2 वचनों की पढ़ाई करेंगे जिससे हम परमेश्वर का कैरेक्टर देखेंगे।
4:6-7
और इस सिंहासन के सामने मानो बिल्लों के समान 7 का समुद्र है।
हाँ,
सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं।
4 प्राणी हैं
जिनके आगे पीछे आंखें आंखें हैं,
इधर भी आंखें उधर भी आंखें, ऐसे चारों ओर क्या है आंखें ही आंखें हैं, ठीक है। अभी ये कौन है जो सिंहासन पे के ऊपर बैठता है, प्रभु यीशु मसीह नहीं, कौन बैठता है प्रभु यीशु मसीह बताएंगे। प्रकाशित वाक्य 5:13
6-7 था ना।
हाँ हाँ हाँ,
इसी का 5:13।
हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 5:13
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा राज्य युगान युग है।
तो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और सिंहासन पे कौन बैठा है? पिता परमेश्वर खुद, ठीक है। तो सिंहासन पे जो अभी 4:6-7 पढ़ो ध्यान से।
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं।
तो ये सिंहासन के बीच में कौन बैठता है? पिता परमेश्वर। और चारों ओर का मतलब जो उसमें खुद है, 4 प्राणी हैं। ये चिनात्मक है। अभी ये नहीं समझना कि वहां पे कोई जानवर बैठा है। नहीं नहीं नहीं, ये चिनात्मक रूप में है। तो ये 4 प्राणी क्या है? 4 प्राणियों का मतलब है परमेश्वर के 4 स्वभाव, परमेश्वर के 4 कैरेक्टर हैं, 4 स्वभाव हैं, ठीक है। वो 4 कैरेक्टर क्या है एक एक करके पढ़ेंगे हम। 7 में पढ़ो पहला कैरेक्टर।
पहला सिंह के समान,
पहला प्राणी है शेर के समान
और दूसरा प्राणी बछड़े के समान,
बछड़े के समान
तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का था,
तीसरा प्राणी इंसान जैसा
और चौथा प्राणी उड़ते उकाऊ के समान।
चौथा प्राणी उड़ते उकाऊ, ये चिनात्मक रूप में, ये चार प्राणी चिनात्मक रूप में, ये है परमेश्वर के चार स्वभाव कैरेक्टर जिसे बोल दें। तो वो क्या क्या है मैं बताता हूँ, ये याद रखना आज के बाद परमेश्वर के चार स्वभाव। पहला क्या है, शेर। शेर किस चीज के लिए जाना जाता है, पावर। तो पहला परमेश्वर का जो
सुप्रीम पावर,
पावर पावर, इसलिए वो पहला प्राणी क्या बोला है, शेर जैसा, क्योंकि परमेश्वर ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके पास ताकत है सृष्टि बनाने की, जीवन देने की, कुछ भी करने की ताकत, जिसमें बोलते हैं ना बिना जीवन है चीज, उसको भी जीवन देने की ताकत किसमें। तो इसलिए पहले प्राणी को चिन्ह दिया गया है शेर जैसा।
दूसरा बछड़ा,
ठीक है, दूसरा क्या है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये शेर जैसा है पहला कैरेक्टर, यानी क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, ताकत शक्ति सामर्थ्य है ना। और इसके आगे पीछे क्या बोलता है, आंखें हैं, चारों ओर क्या है, आंखें हैं। आंखें का मतलब क्या है, एक्चुअल में परमेश्वर के जो मतलब इनकी इनकी दृष्टि जो है ना लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट को क्या बोल सकते हैं,
मतलब
सीमा नहीं है, हाँ मतलब देख दृष्टि बहुत दूर की है, सीमा नहीं है कोई। तो इसलिए तो इसके चार स्वभाव जो है वो है परमेश्वर के पावर, न्याय, प्रेम और ज्ञान। पावर, जस्टिस, लव एंड विजडम। अब एक एक करके हमें अभी इनको पढ़ना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे ये बात। तो मरकुस 10 का 17 से 18 तक ये देख लो वो क्या बोलते हैं,
मरकुस
10 का 17 और 18। और 18,
जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि कोई मैं भी जो मेरी अच्छाई है ना वो भी पिता से ही आ रही है। तो परमेश्वर के चार, जो पहला क्या है, शेर जैसा। शेर का मतलब क्या है, पावर। उसके बाद दूसरा बछड़े जैसा। बछड़े का मतलब क्या है, न्याय। बछड़े का मतलब क्या है,
न्याय।
क्योंकि आप अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बछड़े का बलिदान दिया जाता था पाप माफ करवाने के लिए, ठीक है, याचकों के। तो बछड़े का मतलब है न्याय। परमेश्वर न्याय को कभी नहीं झुठला सकता, न्याय होना है, जस्टिस। पहला पावर, दूसरा जस्टिस, तीसरा जो स्वभाव है वो है प्रेम। इसीलिए बोलता तीसरा प्राणी इंसान जैसा है, प्रेम। चौथा जो है वो है उकाब। उकाब किस चीज के लिए, बहुत ऊंचा उड़ता है और दृष्टि बहुत दूर की, विजडम, ज्ञान बहुत है। तो ये चारों का चार कैरेक्टर हैं परमेश्वर के स्वभाव के। परमेश्वर के ये चार कैरेक्टर हैं जो एक तरह से बिल्कुल बराबर चलते हैं, इम्बैलेंस नहीं होता है। पावर, जस्टिस, लव एंड विजडम, ताकत, न्याय, प्रेम और ज्ञान, ये है चार स्वभाव पिता परमेश्वर के। और यही स्वभाव परमेश्वर ने चारों के चारों किसके दिए, इंसान को भी दिए। इसीलिए उत्पत्ति में बोलता, आओ हम बनाते हैं इंसान को अपने स्वरूप, अपने स्वरूप, यानी वो चार स्वभाव हम किसको देंगे,
इंसान को।
जानवरों को चार स्वभाव नहीं दिए वो चार। अभी इंसान के पास पावर है, पावर है तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद न्याय करता है इंसान, आप देख लो कोर्ट बने हुए हैं जिसमें न्याय होता है, प्रेम है इंसान में? हाँ, हम प्रेम दिखाते हैं, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, प्रेम भी आती है, दया भी आती है, प्रेम है। और ज्ञान, ज्ञान तो आप समझते हो आज साइंस कितनी बढ़ गई है, कितना ज्ञान है। तो ये चारों के चारों स्वभाव इसने इंसान को दिए, इसीलिए अर्जुन की वाटिका में बोलता है आओ बनाते हैं इंसान को अपने स्वरूप पे, जैसा हम में गुण है, जैसा जैसे हमारा स्वभाव है, वैसे वो चार गुण इनको भी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन इंसान एक समंदर है और एक कप है, इंसान कप के समान है, परमेश्वर समंदर के समान है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो जरा सोचो परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान और आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है, और ये चारों सद्भाव परमेश्वर के बराबर चलते हैं। ये पढ़ लो हिजकियल 1:16।
पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की थी और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी कि जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया है,
मतलब पूरा बराबर, हर एक चीज बराबर, चारों के चारों स्वभाव क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है पिता परमेश्वर के बारे में, क्योंकि पिता परमेश्वर सचमुच बहुत महान सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रचने वाला, तो क्यों ना उसकी महिमा में एक गीत हो जाए। ठीक है, तो वो गीत पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 145 से ले 145 का 8 से 21 तक, 145 का 8 से लेके 21 तक। आठ से लेके 21 तक
पढ़े,
पढ़ो।
योग अनुग्रह अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। योग सबों के लिए भला है और उसकी दया की सारी सृष्टि पर है। हे योगा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरा पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का, तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। योगा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। योग अपनी सब गति में धन्य है।
जितने योगा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से भरते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। वह अपने द्रव्यों को इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। योगा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं योगा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें।
देखो, तो ये जबूर भजन संगीता हमारे एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर के बारे में। तो हमने आज बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पिता परमेश्वर के बारे में जाना है। सचमुच हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं जब हम पिता के बारे में बात करते हैं कि ये दुनिया उसके बारे में जानती नहीं है, उसके नाम को तक नहीं जानती है, देख लो, लेकिन फिर भी सब्र से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है जी, इनको मैं सत्य दूंगा और मैं अपनी पहचान करवाऊंगा। और यही सत्य का इंतजार आज सारे नामी ईसाई कर रहे हैं। चाहे आप पेंटिकॉस्टल लगाओ, चाहे आप सीएनआई लगाओ, चाहे सेवन डेज लगाओ, चाहे रोमन कैथोलिक लगाओ, चाहे जो मर्जी लगाओ, किसी को भी ये बात प्रकट नहीं हुई है कि पिता परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, क्या है। बस अंधकार में डंडे बजाए जा रहे हैं, तालियां लगे जा रही हैं, बस हो हुए जा रहा है, दुनिया चली जा रही है। लेकिन जिस दिन ये सच्चाई इस दुनिया को मिली, स्थिति क्या होगी? यशाया 25 का 9 पढ़ लो। यशाया 25 का 9।
उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बात जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे।
प्रकाशित वाक्य 5:13।
प्रकाशित वाक्य 5:13।
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे।
तो ये सारा संसार उसके पवित्र नाम को महिमा देगा। लेकिन आने वाले समय में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें मिली है पिता परमेश्वर के बारे में, जो सर्वशक्तिमान, बड़े आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है। छोटी सी जान पहचान, एक इंट्रोडक्शन। पिता परमेश्वर को पूरी तरह जानने के लिए हमारे एक जीवन तो क्या 50 जीवन भी मिल जाए वो भी कम रहेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन इसी में है।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
देखो, तो ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, प्रार्थना थी। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो अंधकार में हैं इस वक्त, खास करके ईसाई, इनको भी ये समझदारी आए कि पिता कौन है, हमें किसकी आराधना करनी है। इसी में ही प्रभु यीशु मसीह की खुशी है, इसी की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। हजारों साल लग गए हमें ये जानने के लिए, छोटी सी इंट्रोडक्शन के लिए, जान पहचान के लिए कि परमेश्वर कौन है, कौन है। तो ये अंत में अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न बाकी रह जाता है, मीठी वचन 30:4 पढ़ लो। एक प्रश्न आपके लिए, चार, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप बता सकते हैं।
कौन सर्वे चढ़कर फिर उतर आया? कितने वायु को अपनी मिट्टी में बटोर रखा है? कितने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? कितने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता।
उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? कितना सुंदर प्रश्न है ना। यहाँ पे कितने लोगों के बारे में बात हो रही है? तीन?
दो
के बारे में। उसका नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए। उसका नाम है द ग्रेट ऑलमाइटी हेवनली फादर यहोवा, सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर यहोवा। और उनके पुत्र का नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो उसकी जो अपरंपार कृपा दया जिसकी वजह से आज उसने चुना हमें ये सत्य बताने के लिए, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हमारी त्रिदेव की तीन भाग की पढ़ाई की शिक्षा खत्म होती है और निचोड़ ये निकलता है कि ये जो शिक्षा आज सिखाई जा रही है धरती के कोने कोने में, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। अगर हम परमेश्वर की किताब में ढूंढ के पढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक महान, हमें मिलती है एक महान सच्चाई, और वो महान सच्चाई ये है कि एक मात्र ही है परमेश्वर और वो है पिता, और प्रभु यीशु मसीह है उसका इकलौता पुत्र। और हमें मिला है पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान कि वो है उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति। तो हम आशा, हम विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि यूहन्ना 17:17 तेरा वचन सत्य है। इसी के साथ परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।